जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा पदा प्रभु पदा
अभय चरणारविंद भक्ति प्रविष्ट इस्कॉन आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरे गोवर्धन की जय श्री राम की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेम आनंदी ऑल ग्लोरीज द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द श्री गुरु एंड गौरांगा तो सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद अध्याय छह श्लोक संख्या कितना है 14 मुझे 15 बताया है 15 है, ठीक है, आ गया 15। मेरे पीछे बोलेंगे, अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्ने तवस्ते किं वा विदामेसि पृथं विभाता विधत्स्व सम्नो द्विज देव मंत्र अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्ने ऋवकेतवस्ते किं वा विदामे विधत्स्व सम्नो द्विज देव मंत्र। बोलिए, वैष्णव देवी हैं, जो दूसरी पंक्ति में एक एस की तरह है, जो चिन्ह है, ये अवग्रह कहलाता है। ये आ है लेकिन आ नहीं बोलते हैं, तो अगर आ बोलेंगे तो फिर इसके अक्षर की संख्या बढ़ जाएगी। दक्षया दोग्ने रेव, दक्षा दयोग्ने रेव, आ नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक बार और बोलिए माता जी, शब्दार्थ बोलिए। अहम, मैं यानी ब्रह्मा, गिरित्रः शिव जी, च भी सुर आदयः तथा सारे देवता, ये जैसे भी हम हैं, दक्ष आदयः महाराज दक्ष इत्यादि, अग्ने अग्नि के एव सदृश के तवह चिन्ह गारियां, ते आपका, किम क्या वा अथवा विदाम, हम समझ सकते हैं ईश हे प्रभु पृथक विभाता आपसे स्वतंत्र होकर विधत्सव हमें प्रदान करें शम सौभाग्य। नहा हमारा द्विज देव मंत्र ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त मोक्ष का साधन। अब अनुवाद मेरे पीछे बोले, मैं यानी ब्रह्मा शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियां मात्र हैं, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित हैं। क्योंकि हम आपके कण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करें जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम सुनेंगे कथा वस्तु क्या चल रही है। तो यहां पर कथा चल रही है छठे मन्वंतर की। ये आठवां स्कंद है और इस स्कंद में परीक्षित महाराज के प्रश्न के अनुसार सुखदेव गोस्वामी अलग अलग मन्वंतरों के जो अवतार हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो चौथे मन्वंतर के अवतार का वर्णन किया था, जिसमें भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी, तो उसमें काफी विस्तृत वर्णन हुआ, वो चौथे मन्वंतर का था। फिर पांचवें मन्वंतर का भी वर्णन किया, कुछ किया सुखदेव गोस्वामी ने, और उसमें चूंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न नहीं किया तो उसकी कथा संक्षेप में हो गई। लेकिन छठे मन्वंतर में जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये आठवें स्कंद का पांचवा अध्याय था, श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10 चार श्लोकों में चाक्षुष मनु थे और इंद्र थे मंत्रद्रुम, क्या नाम था मंत्रद्रुम है। और इस छठे मन्वंतर में जो भगवान का अवतार हुआ वो हुआ अजित अवतार। कौन सा अवतार? अजित अवतार हुआ। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पयोधिम ये निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा सुरा सुधा ब्रह्माणो भसी धृता कूर्म रूपेण मंदरहा। कि इन भगवान अजित भगवान ने क्या किया कि क्षीर समुद्र का मंथन करके देवताओं के लिए अमृत जो है उत्पन्न कराया, और जो मंदर पर्वत घूम रहा था उस रूप धारण किया। तो इस संबंध में फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, इसलिए ये कथा जो है बहुत लंबी अब हो गई। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि क्षीर सागर का मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये कथा आप मुझे विस्तार से बताइए। इस कारण से छठे मन्वंतर के अवतार की जो कथा है वो बहुत विस्तृत चल रही है। तो फिर उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार जो है असुरों का देवताओं के साथ में युद्ध हुआ और देवता लोग हार गए असुरों के द्वारा। इसमें कारण ये था कि दुर्वासा मुनि का शाप मिल गया था देवताओं को, तो सब देवता लोग जो है हार गए, और देवता लोग जो है पराजित होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। तो ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को लेकर के भगवान के स्थान में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो इस पांचवें अध्याय में जो है 26 से लेकर 50 श्लोक तक ब्रह्मा जी की स्तुति है। भगवान को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, तो वो जो है 25 श्लोकों की स्तुति है उसके, और वहां पर पांचवा अध्याय भी समाप्त हो गया और छठा अध्याय जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होता है कहां से कि भगवान प्रकट हुए और भगवान का कैसा रूप था, तो वो जो है वर्णन आता है कि देवताओं की आंखें चौंधिया गई तो देवता लोग भगवान को नहीं देख पा रहे, भगवान के रूप से जो प्रकाश निकल रहा है नहीं देख पाए, परंतु भक्ति के नेत्रों से कोई व्यक्ति देख सकता है भगवान को। तो भक्ति के नेत्र थे दो लोगों के पास, एक ब्रह्मा जी के पास और दूसरे शिव जी, तो दो लोग जो है भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, बाकी सब देवता लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने प्रकाश उनके रूप से इतना प्रकाश निकल रहा है कि सबकी आंखें चौंधिया गई। तो ब्रह्मा जी अब फिर स्तुति करते हैं, तो ब्रह्मा जी की स्तुति 8वें श्लोक से शुरू हुई और 15वें श्लोक में समाप्त हुई, तो 15वां श्लोक है ये ब्रह्मा जी की स्तुति का अंतिम श्लोक है। ये स्तुति जो कर रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान के सामने कर रहे हैं, भगवान सामने है तो स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो अब ये अंतिम श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अहम गिरित्रस्य सुना दियो, ये कि चाहे मैं हूं चाहे शिव जी हूं और चाहे जितने भी देवता हूं और दक्ष आदि जितने प्रजापति हैं चाहे कोई भी हो, ये सब क्या है, ये चिंगारी के समान है, मतलब हमारी कोई शक्ति नहीं है, चिंगारी में क्या शक्ति होती है ना। तो आप मूल अग्नि हैं और हम लोग जो है वो आपकी चिंगारियां हैं, ये चिंगारियां जब अलग हो जाएं मूल अग्नि से तो उनकी चमक समाप्त हो जाती है, उनके उनमें अग्नि का गुण भी नहीं रहता है ना प्रकाश का कोई गुण रहता है, सब जो है खत्म हो जाता है, और अग्नि के संपर्क में जब चिंगारी आती है तो उसमें अग्नि और प्रकाश का गुण आ जाता है, लेकिन वो अग्नि और प्रकाश का गुण बहुत थोड़ा ही होता है मूल अग्नि की तुलना में, चिंगारी की जो चमक है और उसमें जो गर्मी है वो बहुत थोड़ी होती है, जो भी हो वो भी अग्नि के संपर्क में ही आती है। इस प्रकार से हम सब जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, उसी प्रकार अंश हैं जैसे चिंगारियां हैं अग्नि का अंश, और हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो फिर हमारा जो मूल गुण है, हालांकि वो आंशिक गुण ही है, भगवान के जितने भी गुण हैं उनकी मात्रा असीमित है और हमारे अंदर जो भी गुण हैं सीमित मात्रा में जो गुण हैं वो भी आते तभी हैं जब हम भगवान की सेवा में लग जाएं। जैसे अग्नि में जो चमक है या गर्मी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन वो भी जो है तभी प्रकट होती है चमक जब अग्नि के संपर्क में आई चीज, और अग्नि के संपर्क से दूर हो जाए तो क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, बुझ जाएगी, उसमें कुछ भी गुण नहीं होगा, है ना। तो यहां पर ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं किम वा विदामे से पृथक विधाता विभाता, तो हम लोग जो है आपसे अलग हो करके अपना क्या हित जान सकते हैं, हमारा हित कुछ भी नहीं हो सकता है, चिंगारी का क्या हित होगा अगर अग्नि से अलग हो जाए, है ना। तो हम आपसे अलग होकर के अपना क्या हित जान सकते हैं, विधत्सु समनो द्विज देव मंत्रम, तो अब जो है आप ही हमको सम का मतलब उपाय बताइए, विधत्सु मतलब उपाय बताइए, किस उपाय से हमारा कल्याण हो सकता है, देवताओं का और ब्राह्मणों का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ देवता और ब्राह्मण इनकी समस्या है, देवताओं की समस्या है, असुरों से हार गए हैं, है ना, और जो ब्राह्मण हैं तो उनकी भी समस्या, दक्ष जैसे प्रजापति हैं ये ब्राह्मण हैं, तो इनकी समस्या, देवताओं और ब्राह्मणों की जो समस्या है उसका जो है हल आप हमें बताइए। तो ये जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और ये सब देवताओं के पक्ष में ब्रह्मा जी भगवान से बात कर रहे हैं, बाकी सब देवता लोग जो सुन सकते हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में द्विज देव मंत्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो प्रभुपाद का पूरा जो तात्पर्य है इसी अंतिम जो शब्द है इन पर ही प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य दिया है, है ना। क्या है अंतिम शब्द? द्विज देव मंत्रम। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र शब्द का अर्थ है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है। मंत्र, मंत्र का अर्थ क्या है? जो मन की रक्षा करे, त्रामने त्रायते, जो मन की रक्षा करे, है ना। और मन ए मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषया संगो मोक्षाय निर्विषय मना। विषयों में आसक्त है मन तो बंधन का कारण है, है? और जब मन विषयों में आसक्त ना हो, निर्विषय हो, तो यही मन मुक्ति का कारण है ना। तो जो मंत्र है, तो जो मंत्र है वो क्या करेगा? हमको, हमारे मन को विषयों से अलग करेगा, मन की रक्षा करेगा। तो मन को निर्विषय करना, मन को निर्विषय करना, विषयों की आसक्ति से निकालना, तो ये कार्य मंत्र का है। और इसी से ही फिर क्या होगी? रक्षा होगी। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं मंत्र शब्द का अर्थ है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है। इस भौतिक जगत से केवल द्विज यानी ब्राह्मण तथा देव देवता ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार मोक्ष पा सकते हैं। तो जो द्विज हैं यानी ब्राह्मण और देवता, ये लोग भगवान के निकट होते हैं। देवता लोग जो है भगवान के अधीनस्थ होकर के सृष्टि की व्यवस्था का कार्य करते हैं, और जो ब्राह्मण लोग हैं ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हैं? और बाकी तीन वर्णों के लिए, ब्राह्मण से नीचे जो बाकी तीन वर्णों के लिए मार्गदर्शन करते हैं, हैं? उचित रास्ता दिखलाते हैं, है ना। तो जो ब्राह्मण होते हैं तो ये मानव समाज का शीर्ष होता है। तो जो सिर का हिस्सा है, शरीर में सिर का हिस्सा है, उसी में ही सब बातें सोची जाती हैं कि शरीर की रक्षा के लिए हमें क्या करना है। तो विचार भी सिर ही करता है, सुनने का कार्य भी सिर के द्वारा होता है, बोलने का कार्य भी, देखने का कार्य भी सिर के द्वारा। तो जितना भी ज्ञान के जो भी कार्य होते हैं तो सब सिर के द्वारा होते हैं। तो सिर ही जो है हमें पूरे शरीर के लिए आदेश देता है कि क्या करना, कैसे करना, है ना। तो ये मानव समाज के लिए जो है, ये जो ब्राह्मण है वो शीर्ष कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत से केवल द्विज यानी ब्राह्मण तथा देव देवता ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार मोक्ष पा सकते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि बाकी जो स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, तो क्या उनको नहीं मिलेगा रास्ता? तो समझने वाली बात है कि ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में ही जो है जो निम्न वर्ण के लोग हैं वो भी चलें, है ना। तो ब्राह्मण गुरु है, चारों वर्णों में जो है ब्राह्मण गुरु होता है। तो ब्राह्मण के आदेश के अनुसार जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो निम्न वर्ग के लोग भी जो है क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वो मंत्र है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? भगवान जो कुछ बोलेंगे वो मंत्र है, क्योंकि भगवान का बोलना ही मंत्र है। भगवान के मुख से जो कुछ भी शब्द निकलते हैं तो वे हमेशा ब्राह्मणों के लिए और देवताओं के जो है हित के लिए होते हैं। भगवान की जो वाणी है वो हमेशा हितकारी होती है, सभी जीवों के लिए हितकारी होती है, है? लेकिन जो देवता हैं और ब्राह्मण हैं वो भगवान के निकट होने के कारण भगवान की आवाज को सुन पाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो कुछ बोलते हैं वो मंत्र है और बद्ध जीवों का मानसिक तर्क वितर्क से उद्धार कराने के लिए पर्याप्त है। तो मन जो है क्या है? फंसा हुआ है। किसमें फंसा है? मानसिक तर्क वितर्क, या तो विषयों में फंसा है मन, है? तो फिर ये बंधन का कारण है। अगर विषयों से निकल जाता है तो मानसिक तर्क वितर्क, यानी भगवान के संदेश को ना सुन करके मानसिक तर्क वितर्क में फंसा रहता है। तो मानसिक तर्क वितर्क का मतलब यह है कि इस संसार से जो है हमें छूटने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने ही कुछ मनोधर्मी से जो है सोचते हैं कि ये करने से वो करने से हम दुखों से छूट जाएंगे, तो मानसिक तर्क वितर्क कहलाता है। जो भगवान का संदेश है, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है, तो उसके द्वारा ही हम छूट सकते हैं संसार बंधन से। लेकिन हमारा जो मन है वो भगवान का संदेश ना ग्रहण करके अपने जो है तरीके से छूटना चाहता है, उसे कहते हैं मानसिक तर्क वितर्क, है ना, या मनोधर्मी। तो मनोधर्मी के द्वारा हम कभी नहीं छूट सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीवों का मानसिक तर्क वितर्क से उद्धार कराने के लिए पर्याप्त है भगवान की वाणी। अगर हम भगवान की वाणी सुने तो भगवद्गीता के रूप में भी भगवान की वाणी है, यहाँ तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो क्या होती है, हमारे उद्धार के लिए है, जीव के उद्धार के लिए होती है। आगे, सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं, तो ये जो प्रभुपाद बता रहे हैं, सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं, तो गीता का एक श्लोक है, विशेष श्लोक है इस संबंध में, 15वें अध्याय का कितनी संख्या का श्लोक है, छठा श्लोक है, मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, है ना, वो कैसा है, शुरू में क्या है, हमें वांसो, सातवां है, हमें वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठान इंद्रियाणि, हाँ सातवां श्लोक है, 15वें अध्याय का सातवां श्लोक है, कि जो जीव आत्मा है तो ये संघर्ष कर रहा है, मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति में स्थित मन और पांच इंद्रियां हैं, तो छह वस्तुओं को ये क्या करता है, कर्षति, खींचता है जीवात्मा, है ना, तो संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। तो यहां प्रॉपर लिखते हैं, सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं, इस संघर्ष से मोक्ष सर्वोच्च लाभ है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मंत्र प्राप्त किए बिना मोक्ष असंभव है। तो भगवान से जब तक मंत्र ना प्राप्त हो, तो मंत्र का एक अर्थ तो यह है कि मन की रक्षा करे, लेकिन दूसरा अर्थ भी है मंत्र का, मंत्र का दूसरा अर्थ क्या है, उपाय। जैसे राजा के मंत्री होते हैं, मंत्री क्या करते हैं, मंत्रणा देते हैं, मंत्र देते हैं, मंत्र का मतलब उपाय। तो राजा जो है अपने मंत्रियों की सभा में जो है विचार करता है, तो मंत्री लोग जो है अपने अपने मंत्र देते हैं, तो मंत्र का मतलब उपाय भी होता है। तो यहाँ पर भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें आप मंत्र दीजिए, शम नो, हमारे कल्याण के लिए मंत्र दीजिए, तो मंत्र का मतलब उपाय दीजिए, तो भगवान उपाय बतलाएंगे, है ना। तो कभी भगवान स्वयं कार्य करते हैं देवताओं के पक्ष में, असुरों का विनाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं असुरों का विनाश नहीं करेंगे, बल्कि देवताओं को मंत्र देंगे, और मंत्र का मतलब कभी कभी होता है गुप्त परामर्श, तो देवताओं को गुप्त परामर्श देंगे कि असुरों से तुम्हें किस प्रकार व्यवहार करना है, असुरों को नहीं बताना तुम अपना क्या, तुम्हारा असली प्रयोजन क्या है, तो मंत्र उसको भी कहते हैं, कि जो गुप्त रूप में बताया जाए, मैं आपको गुप्त रूप में बताऊंगा मंत्र, और आप उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, तो वो अपना जो उद्देश्य है वो आप नहीं बताएंगे, तो आपको कुछ ड्रामा करना पड़ेगा, कि दिखावा करना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते वो करना चाहते, लेकिन आप चाहते कुछ और है। तो भगवान मंत्र देंगे देवताओं को, तो देवताओं को क्या मंत्र देंगे, कि तुम असुरों से संधि करो, फिर संधि का ड्रामा है। तो भगवान देवताओं को भी जो है ऐसी नीति सिखलाते हैं असुरों के साथ, कि तुम्हें जो है असुरों के साथ में कुछ इस प्रकार ड्रामा करना है, संधि का ड्रामा करो, नाटक करो, लेकिन वास्तव में अंदर से तुम्हारा असुरों के साथ में कोई संधि नहीं है, अंदर से तो यही है, मंत्र अमृत उत्पन्न करने के लिए संधि करो, और इस शर्त पर कि हम सबको अमृत का हिस्सा मिलेगा, फिर मिलना तुमको चाहिए अमृत, उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनको उनको परिश्रम ही मिलना चाहिए, वो परिश्रम ही करेंगे और तुमको मिलेगा अमृत, तो संधि करो, तो दिखावा करना है, तो मंत्र का मतलब ये भी होता है। तो भगवान मंत्र प्रदान करेंगे. असुरों से बोलना कुछ है और मन में कुछ और, इस प्रकार की भी नीति भगवान सिखाते हैं देवताओं को, है ना. तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मंत्र प्राप्त किए बिना मोक्ष संभव है. तो यहाँ पर प्रभुपाद चूंकि तात्पर्य दे रहे हैं, वास्तव में आज की शिक्षा के अनुसार दे रहे हैं कि हमारे लिए क्या शिक्षा है. तो कथा से हट करके भी प्रभुपाद के तात्पर्य क्या होते हैं, हमारी शिक्षा के लिए विशेष उपयोगी है, है ना. तो इसलिए प्रभुपाद जो है मंत्र का अर्थ दूसरा दिन निकाल रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो है क्या है, मोक्ष का उपाय भगवान देते हैं. आगे आदि मंत्र गायत्री मंत्र है, अतः संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण यानी द्विज बनने के योग्य हो जाता है तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है. तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं आदि मंत्र गायत्री है, लेकिन ये क्या है, स्वच्छ अवस्था में ही किया जाता है. गायत्री मंत्र कैसा है, शुद्ध अवस्था में ही किया जाता है, है ना. तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये मंत्र जो है इससे मनुष्य मोक्ष पा सकता है, किंतु ये मंत्र केवल ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए ही उपयुक्त होता है. गायत्री मंत्र ब्राह्मणों देवताओं के लिए उपयुक्त होता है. आगे कलयुग में हम सभी अत्यंत कठिन स्थिति में हैं, जिसमें ऐसे उचित मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस युग के संकटों से उबार सके. मतलब अशुद्ध कलयुग में लोग कितने अशुद्ध हैं, तो गायत्री मंत्र में अधिकार नहीं है सबका. तो अभी आजकल जो है गायत्री परिवार बहुत चल रहा है ना, गायत्री मंत्र जो है वो सिखाते हैं, लेकिन ये भगवान की आज्ञा नहीं है कलयुग में गायत्री मंत्र का प्रचार किया जाए या गायत्री को महामंत्र बताया जाए. कलयुग में महामंत्र गायत्री नहीं है बल्कि कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना. तो प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में गायत्री मंत्र में सबको अधिकार नहीं है. तो हम लोगों को गायत्री मंत्र दिया जाता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा शुद्ध हो जाएं और ब्राह्मण के स्तर पर आ जाएं, तब गायत्री मंत्र दिया जाता है, है ना. तो जहाँ प्रभुपाद जो है हमारी शिक्षा के लिए बड़े उपयोगी तात्पर्य दे रहे हैं श्रीमद् भागवत के, है ना. तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, कलयुग में हम सभी अत्यंत कठिन स्थिति में हैं, जिसमें ऐसे उचित मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस युग के संकटों से उबार सके. संकट बहुत दूषित है, कलयुग बहुत दूषित है, हर व्यक्ति का जो मन है वो भी दूषित है और शरीर भी बहुत अपवित्र है, है ना. और पवित्रता के सिद्धांत भी लोग नहीं जानते, नियम भी नहीं जानते. तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप की विधि नहीं है, कौन, हरे कृष्ण मंत्र. हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है अशुद्ध और शुद्ध हर अवस्था में किया जा सकता है. अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गोपिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतरा सूची. तो भगवान के नाम का जो मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र है, ये जो है कलयुग का क्या है, महामंत्र. द्वात्रिंशदक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम कलौ योगे महामंत्र सम्मतो जीवतारणे, जिसमें 32 अक्षर हों और 16 नाम हों. द्वात्रिंशदक्षरम मंत्र नाम षोडशकान्वितम, 16 नाम, 16 नाम और 32 अक्षर. अब कौन सा मंत्र है जिसमें 16 नाम हो 32 अक्षर हो, यही हरे कृष्ण मंत्र, इसी में ही है, ठीक है ना. तो कलौ योगे महामंत्रा, कलौ योगे महामंत्रा, गायत्री महामंत्र नहीं है. कलयुग का महामंत्र कौन सा है, ये कलौ योगे महामंत्रा सम्मतो जीव तारणे, जीवों का उद्धार करने के लिए शास्त्र सम्मत है. उत्सृज्यतन महामंत्रम ये त्वन्यत कल्पितम पदम, इस महामंत्र को छोड़ करके अपनी कल्पना से किसी भी पद को महामंत्र का नाम देंगे. उत्सृज्यतन महामंत्रम ये त्वन्यत कल्पितम पदम, अपनी कल्पना से किसी भी पद को महामंत्र का नाम देंगे तो क्या करेंगे, महानामेति गायन्ति ते शास्त्र गुरु लंघिना, तो वे शास्त्र और गुरु का उल्लंघन करने वाले, शास्त्र गुरु का उल्लंघन करने वाले हैं. तो चाहे गायत्री मंत्र हो या कोई भी पद हो, अगर महामंत्र का नाम देते हैं तो गुरु शास्त्र का उल्लंघन करने वाले, है ना. तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने चैतन्य अवतार में हमें हरे कृष्ण मंत्र प्रदान करते हैं. तो भगवान चैतन्य ने स्वयं दिया, है ना. हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। कला तथा दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान, हरि बोल हरि बोल, बड़ी समस्या है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कलह तथा दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन श्री भगवान, हरि बोल, श्री भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो कितना मतलब जोर देके कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, तीन बार केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम है एकमात्र गति है कलयुग में। फिर करो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, हैं, और है ही नहीं कोई गति, और कोई गति है ही नहीं, और कोई गति, अन्यथा गति नहीं है। कितना जोर देके, हाँ मतलब इसमें विधि में भी जोर दिया और निषेध में भी जोर दिया, नहीं है नहीं है नहीं है, इतना जोर दिया। और भगवान चैतन्य ने भी जो है हरे कृष्ण मंत्र दिया है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं अपने, हरि बोल, अपने शिक्षाष्टकम में भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। परम विजयते का मतलब है कि सर्वोच्च विजय प्राप्त करता है श्री कृष्ण संकीर्तन। कलयुग में श्री कृष्ण संकीर्तन की ही परम विजय होती है। परम का मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च विजय, सबसे ज्यादा विजय इस संकीर्तन की होती है। दूसरे उपाय की वो विजय नहीं होगी, यानी सफल नहीं होगी, दूसरे उपाय सफल नहीं होंगे। और सचमुच ऐसा है जो प्रभुपाद ने करके दिखला भी दिया कि पूरी दुनिया में लोग जो है इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, और बिना किसी भेदभाव के कि कोई स्त्री है कोई पुरुष है, कोई नीच है कोई ऊंचा, ना तो ऊंचा और नीच का कोई विचार है, और ना किसी धनी और निर्धन का विचार है, ना किसी उच्च और मतलब समाज भी अलग अलग प्रकार के समाज हैं या अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, कोई मुस्लिम है कोई है। तो जितनी भी जातियां और जितने भी जो है वर्ण हैं, समाज हैं, आश्रम हैं, सब के लिए ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये प्रभुपाद ने दिया है। तो ये वास्तव में ये परम विजय थे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष के लिए ये मंत्र प्रदान किया है। तो भगवान स्वयं जपते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र का जाप करते थे, है ना। और इसमें वेद मंत्र भी है एक, जिसमें बताया गया है कि सुनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्लाद यति विभु सैव मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति। ये वेद मंत्र है, उसमें क्या कहा गया, सुनाम मूल मंत्रेण, अपने नाम रूपी मूल मंत्र के द्वारा सबको भगवान प्रसन्न करते हैं, यानी सुख प्रदान कर रहे हैं। सुनाम उनका जो नाम है मूल मंत्र है, सब मंत्रों का मूल, मूल का मतलब जड़, जड़ से ही जो है सब शाखाएं निकलती हैं, जितने मंत्र निकले हैं सब भगवान के नाम से निकले हैं। तो सुनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्लादयति विभु, तो भगवान जो है अपने नाम के मूल मंत्र के द्वारा सबको सुख पहुंचाते हैं। सैव मूल मंत्रम जपति, वो खुद भी मूल मंत्र जपते हैं, उनको भी आनंद आता है इसका जपने में। हरि रीति कृष्ण इति राम इति, तो मूल मंत्र के ये तीन बीज हैं, हरे कृष्ण और राम। तो हरि रीति कृष्ण इति राम इति, तो ये वेद मंत्र है ये। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष के लिए ये मंत्र प्रदान किया है। आगे, हम इस भौतिक संसार के संकटों से उद्धार पाने का कोई साधन खोज नहीं सकते, तो हम नहीं खोज सकते। हमें जो है ऊपर से जो रास्ता दिखाया जाता है उसी से ही हम कुछ सही बात जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। हम अगर खोजेंगे तो हमारा पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा, क्या हम खोजें, है ना। तो जब हमारे पास आता है भगवान का संदेश आता है और ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, है ना। अवरोह पंथ, है ना। और आज का जो विज्ञान है वो किस प्रकार की विधि से ज्ञान प्राप्त करता है, आरोह पंथ। आरोह पंथ यानी एसेंडिंग प्रोसेस। तो अपने अपने परीक्षण करके प्रयोग करके वो जो है कुछ जानते हैं, दवाइयाँ का आविष्कार करते हैं या कुछ मशीनों का आविष्कार करते हैं, तो ये एसेंडिंग प्रोसेस। लेकिन संसार बंधन से छूटने का जो उपाय है वो एसेंडिंग प्रोसेस से यानी आरोह पंथ से आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें आप जो है प्रयोग करें और परीक्षण करें तब आपको जो है मतलब निकालें कि भाई क्या है। वो तो ये भी नहीं जान पाते हैं कि अगला जीवन है। आज का विज्ञान तो इतना अंधकार में है, इतना अंधकार दे रहा है सबको कि अगला जीवन ही नहीं है। इतना अंधकार, अगला जीवन ही नहीं है, मतलब बिल्कुल पशु बना दिया आज के विज्ञान ने। तो शिक्षा बहुत इसमें विज्ञान की शिक्षा बहुत ज्यादा है, बहुत इसके विभाग हैं, शिक्षा के विभाग हैं, है? लेकिन अज्ञान इतना ज्यादा है कि घोर पशु बना देता है। कि जो शिक्षित होता है व्यक्ति, आज के विज्ञान में जो शिक्षित होता है वो बिल्कुल नहीं मानता कि अगला जीवन है, इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से हर काम करता है और फिर जाएगा तो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, है ना। तो आज का विज्ञान बहुत खतरनाक है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार के संकटों से उद्धार पाने का कोई साधन खोज नहीं सकते। यहाँ तो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता एवं दक्ष जैसे प्रजापति भी उन परमेश्वर के समक्ष प्रकाशमान चिनगारी के तुल्य हैं, जिनकी तुलना महान अग्नि से की जाती है। तो आप वो भी चिनगारी, ब्रह्मा जी अपने को भी कह रहे हैं हम चिनगारी, तो हम फिर क्या है, हम तो चिनगारी की भी चिनगारी, हम तो कुछ भी नहीं, हम क्या समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो है जो हमें उपाय बताएंगे उसी से ही हमारा जो है कल्याण हो सकता है, रक्षा हो सकती है, है ना। हम खुद नहीं जान सकते। तो जब ब्रह्मा शंकर तक जो है अपना कल्याण नहीं जान सकते इस भौतिक संसार से, वो भी चिनगारी के समान है अग्नि के सामने, और भगवान की तुलना अग्नि से की गई है, तो हम क्या जान सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं चिनगारियां तभी तक सुंदर लगती हैं जब तक वे अग्नि में रहती हैं। उसी प्रकार हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य में रहकर सदैव भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि तभी हम सदा दीप्तिमान रह सकेंगे। तो ये जो सिद्धांत है प्रभुपाद ने इस श्लोक के अंतिम शब्द से निकाला सिद्धांत, है ना। तो ये प्रभुपाद की जो है विशेष योग्यता है कि तात्पर्य जो प्रभुपाद ने दिए हैं तो कथा से हट करके भी अगर तात्पर्य देते हैं तो हमारी शिक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जो ही हम श्री भगवान की सेवा से नीचे गिर जाते हैं, तो सेवा से नीचे गिर गए मतलब चिनगारी आग के साथ में नहीं रही, चिनगारी गिर के नीचे तो क्या हो गई, चिनगारी काली पड़ गई बिल्कुल। तो सेवा से नीचे गिर गए तो चिनगारी अग्नि के संपर्क में है, इसके अंदर हम भगवान की सेवा में, हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो हम भगवान के निकट हैं, इसे चिनगारी अग्नि के निकट होती है। तो नीचे गिर जाती है, हमारा तेज और हमारी चमक तुरंत समाप्त हो जाएगी या कुछ काल के लिए रुक जाएगी। जब मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिनगारी तुल्य हम सारे जीव इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की स्थिति में आ गिरते हैं तो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अब हम क्या है, हम गिरी हुई अवस्था में, चिनगारी अग्नि के संपर्क से नीचे गिर गई तो हम भी भगवान की सेवा से नीचे गिर गए। अब उपाय क्या है, मंत्र है? तो मंत्र का मतलब एक तो है कि मंत्र जपना और दूसरा मंत्र का मतलब उपाय, तो दोनों इसी में ही 16 नाम यही उपाय भी है, यही हमको जपना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किया जाता है। इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से हम इस भौतिक जगत की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो सकेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक की जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। हे प्रभु, मैं और शंकर जी, अन्य देवता गण सभी, हे प्रभु मैं और शंकर जी, अन्य देवता गण सभी, सब ऋषि मुनि और दक्ष आदि सब प्रजापति, सब ऋषि मुनि और दक्ष आदि सब प्रजापति, सभी आपके प्रभु अंश हैं, जो अग्नि से निकली चिंगारी, सभी आपके प्रभु अंश हैं, जो अग्नि से निकली चिंगारी, भूल से ही वे अपने को अग्नि से भिन्न ही मान रहे, भूल से ही वे अपने को अग्नि से भिन्न ही मान रहे। ऐसी अवस्था में प्रभु हम समझ ही क्या पावे, ऐसी अवस्था में प्रभु हम समझ ही क्या पाए, ब्राह्मण और देव दोनों का कल्याण जिससे हो जाए, ब्राह्मण और देव दोनों का कल्याण जिससे हो जाए। हे प्रभु अब आप ही आदेश उसका दीजिए, हे प्रभु आप ही आदेश उसका दीजिए, जो भी उचित आप समझें वैसा ही कर लीजिए, जो भी उचित आप समझें वैसा ही कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक के संबंध में कुछ चर्चा की। तो अभी आप जाइए नहीं, विशेष जो कार्यक्रम है वो प्रश्नोत्तर का होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी इनको माइक दीजिए, या फिर जोर से बोलना, अगर माइक काम नहीं कर तो जोर से बोलिए।
हरि बोल, मेरी जिज्ञासा ये है, आपने चिंगारी के समान,
आप बिना माइक के बोलो, बिना माइक के बोलो, जोर से बोलो, छोड़ दो, हाँ जोर से बोलिए। हाँ यहाँ पर हमें समझना है कि चिंगारी जैसे, अब देखिए एक तो अग्नि और चिंगारी जो भौतिक जगत में है, जो अग्नि भी होती है तो वो भी बुझ जाती है, तो इसलिए भगवान को कहा गया मूल अग्नि। मूल अग्नि का मतलब है कि जो बिना ईंधन के जलती हो और उसका अंत ना हो, तो भगवान एक ऐसी अग्नि है। अब इस प्रकार से आप सोचिए कि अग्नि भी कैसी है, भगवान की तुलना अगर अग्नि से की जाती है तो ऐसी अग्नि से नहीं की जाती जो ईंधन से जलती हो। लकड़ी से अगर आग जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी समाप्त हो जाती है तो आग भी बुझ जाती है, तो भगवान ऐसी अग्नि नहीं है। भगवान ऐसी अग्नि है जो बिना ईंधन के और प्रज्वलित हो रही है और हमेशा वो बनी रहती है, ठीक है। और चिंगारी भी हम लोग जो है, हमारी तुलना जो चिंगारी से दी जाती है, वो चिंगारी भी ऐसी नहीं है जो आग में जो जलते जलते खत्म हो जाएगी, चिंगारी भी जो है राख हो जाएगी, तो ऐसी हम चिंगारी नहीं, हम चिंगारी हैं हमेशा जो रहती है, हमेशा रहती है, बस अंतर केवल है कि अग्नि के संपर्क में है वो चमक उसमें आ जाती है, अग्नि से दूर होती है तो चमक समाप्त हो जाती है। लेकिन चिंगारी भी नित्य है, अग्नि भी नित्य है, चिंगारी भी नित्य है, एक ऐसी अग्नि और चिंगारी से जो है हमारी और भगवान की तुलना होती है, है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ काल के रुक जाएगी, चमक तुरंत समाप्त हो जाएगी या कुछ काल की रुक जाएगी। इसका मतलब है कि अगर चिंगारी अग्नि से दूर हो गई तो बुझ गई, अग्नि के संपर्क में आई तो तुरंत आ जाए। तो यहाँ पर वही बात यही है कि हम भगवान की सेवा में आ जाते हैं तो हम तुरंत अपना जो है तेज प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो मुख्य बात यही है कि भगवान के संपर्क में हमेशा बने रहो, है ना, और इस प्रकार का प्रयोग मत करो कि भगवान की सेवा हम बंद कर दें, है? तो अगर हम जो है भगवान के संपर्क में कुछ अपना तेज प्राप्त कर लेते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि ये तो तेज मेरा अपना आ गया, अब तो मैं जो है मुक्त हो गया, ये निर्य विन्दाक्ष विमुक्त मानिनस, तो ये स्वभावत अभिशुद्ध बुद्धिया, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो अपने को मुक्त मान लेते हैं, है ना। तो वो जो है बड़े कष्ट से उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया, तो भगवान की सेवा से उन्होंने ये अपनी चमक प्राप्त कर ली और अब वो अपने को स्वतंत्र मान रहा है। तो क्या होता है, आरोही कृष्ण पदम परम पदम तथा पतंत यथो अनादित्य। तो आपके चरणों का आदर न करने के कारण पतंत यथो अधा पतत हो जाता है, तो गिर जाता है ना। तो ये बड़ी जो है दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अपने को स्वतंत्र मान लें। तो चिंगारी कभी स्वतंत्र नहीं है, चिंगारी को हमेशा समझना चाहिए कि अग्नि के संपर्क में ही मुझे जो है ये तेज आया है और मैं जब तक भगवान की मैं सेवा में रहूंगा, भगवान की छत्र छाया में रहूंगा, तब तक मैं सुरक्षित हूं। तो ये हमेशा हमें समझना है, जीव को जो है कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मैं जो है मुक्त हो गया, अब तो जो है मुझे भगवान की सेवा की आवश्यकता नहीं है, अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब तो मैं मुक्त हो गया। तो कई लोग जो है इस प्रकार से मानते हैं ना, तो वो जैसे निर्विशेषवादी हैं, तो ये लोग जो है क्या मानते हैं, ठीक है आप लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते क्या हो जाएंगे, आप जो है पूर्ण हो जाएंगे, फिर आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, भक्ति केवल साधन मात्र है, और जब आप पूर्ण हो जाएंगे भक्ति के द्वारा तो फिर भक्ति भी समाप्त हो जाएगी और आप भी जो है भगवान के साथ एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो विचार है वो बहुत गलत है। चिंगारी जो है अगर सोचे कि मैं अग्नि बन गई है ना, और अब अग्नि के संपर्क से दूर हो जाए तो क्या होगा, तो कभी वो भगवान के साथ एक नहीं होता। तो चिंगारी जो है अग्नि के समीप रह करके अपना तेज प्राप्त कर लेती है, तो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे। तो जिनकी जो है ये भावना हो जाती है, ये निर्विंदाक्ष में मुक्त माने ना, अपने को मानते हैं मुक्त मानते हैं है, और तो ही अस्त भावात, उनका भक्ति का भाव अब अस्त हो गया, तो भक्ति के भाव से वो मुक्ति की अवस्था में आ गए, अब मुक्ति अवस्था में आकर के अब उनका भक्ति का भाव अस्त हो गया। क्यों, तो अपने को मुक्त मान लिया, अब तो हम मुक्त हो गए, अब तो भगवान की सेवा से भी मुक्त हो गए, अब हमको भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अब शुद्ध बुद्धिया, बुद्धि शुद्ध नहीं है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, हैं? तो क्या होता, आरोही कृष्ण परम, बड़ा कष्ट से तो उन्होंने परम पद प्राप्त किया था, तो भक्ति का साधन बड़ा कष्टकारक होता है। तो ऐसा मत सोचो कि बस चलो ठीक है, चिंगारी दूर हो गई तो बुझ गई, चलो अग्नि के संपर्क में आ जाए। बहुत कष्ट से जो है हम उठ करके वहां परम पद तक पहुंचते हैं, तो बहुत कष्ट है साधन, साधन भक्ति ऐसा भी बड़ा कष्ट होता है। तो गिरना आसान है, फिर वापस उठना बहुत कठिन है। तो इसलिए जो है हम अपनी बुद्धि को हमेशा शुद्ध बनाए रखें और भगवान की दास्ता में रहें, भगवान के हरि बोल, तो भगवान में रहें हमेशा, है ना। अगर ऐसा विचार किया हमने है, तो क्या हुआ, बनी बनाई सब जो जो भक्ति है वो सब नष्ट हो गई। परम पतम तथा पतंत यथो अनादित, आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण अधा पतित हो जाते, नीचे गिर जाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि मैं कृष्ण का दास नहीं रहूंगा और मैं अपना जो है अपना ही दास बन जाऊंगा, अपना ही मालिक बन जाऊंगा, स्वयं मालिक बन जाऊंगा। तो जीव कभी स्वयं मालिक नहीं बन सकता और एक भी नहीं हो सकता है। तो जो ऐसे होते हैं निर्विशेषवादी कि भगवान से एक हो जाओगे, तो एक भी नहीं हो सकते आप। तो हमेशा आप अपने को दास समझिए और इसी भावना में रहिए कि आप गिर जाएंगे, अगर आप हरि बोल हरि बोल, अगर आप जो है अपने को स्वतंत्र मानेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, है ना। तो आप शून्य नहीं हो सकते, शून्यवादी कहते हम शून्य हो जाएंगे, है ना। निर्विशेषवादी कहते हम भगवान में मिल जाएंगे, तो ना आप शून्य होंगे ना भगवान में मिल जाएंगे, आप हैं और भगवान है, और आपके और भगवान के बीच में एक सेवा का संबंध है, उसमें आप हमेशा बने रहो, हमेशा बने रहो, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत, हाँ जी प्रभु, हाँ जोर से बोलिए, इनका प्रश्न है विज्ञान के बिना. देखिए विज्ञान एक विज्ञान होता है आत्मा का विज्ञान, तो एक दूसरा भौतिक विज्ञान. ये जो भौतिक विज्ञान है इसमें तो हम बहुत से आविष्कार करते हैं, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी. ये सब टेक्नोलॉजी है जो जिसके द्वारा हम जो है ये सब सुविधाएं पाते हैं, जीवन की सुविधाएं पाते हैं. तो हम इनको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कारण हम जो है अगर इस अज्ञान में आ जाएं, तो आज की जो टेक्नोलॉजी है ये अज्ञान दे रही है हमको. आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस बात का जो है बहुत बड़ा अज्ञान दे रहे हैं हमको. क्या अज्ञान दे रहे हैं? कि हम शरीर हैं. बहुत बड़ा ज्ञान है हम शरीर हैं, और शरीर नष्ट होगा तो हम भी नष्ट हो जाएंगे. इतना बड़ा अज्ञान है ना, ये जो है मतलब इतना ज़्यादा इसमें नुकसान है. इससे बड़ा और कोई जो है मानव समाज का अहित नहीं हो सकता. बहुत बड़ा अहित है कि आपको बिल्कुल पशु बना दिया. अब आज का जो व्यक्ति है विज्ञान पढ़ करके वो जो है शिक्षित हो जाता है, लेकिन शिक्षित क्या है? पशु है. अब शिक्षित पशु है उससे अच्छा अशिक्षित मनुष्य. जो अशिक्षित है ना, तो वो जानता है कि भाई अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवन मिलेगा, है ना. इसलिए मैं कैसे कर्म करूं कैसे कर्म ना करूं, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है वो ज्यादा शिक्षा नहीं, उसको शिक्षित नहीं है, तो वो ज्यादा सुरक्षित है. अशिक्षित व्यक्ति जो मनुष्य है, कि मनुष्य की जो है एक जो आवश्यक ज्ञान है मनुष्य का यही है कि अगला जीवन है. अब अगले जीवन को आप नहीं मानते हैं, है ना, तो आप क्या हो गए? आप बिल्कुल पशु हो गए. और आप जो है अपने हिसाब से सब कर्म करते हैं, जो ठीक लगे वैसा कर्म करो, और उसके अनुसार क्या होगा? जो उच्च अधिकारी हैं देखेंगे आपको नरक में जाना तो नरक में डाल देंगे. तो मनुष्य का जीवन जो है बड़ा जो है खतरनाक है. इसमें आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं अगर सही दिशा में कार्य करें, और अगर आप गलत दिशा में काम करेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान पाएंगे और अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा. आप सोचिए मनुष्य का जीवन जिनको मिला, जिन्होंने दुरुपयोग किया, अभी कितने पेड़ पौधे कितने हैं, कितनी संख्या है मनुष्यों की तुलना में, कितनी संख्या में पेड़ पौधे पशु पक्षी और छोटे छोटे कीड़े हैं, कितनी संख्या में है. मनुष्य के जीवन का दुरुपयोग करने के कारण ही इनको अब कितने करोड़ जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा. ये सब पशु पक्षी कीड़े मच्छर हैं, है ना, तो ये सब जो है मनुष्य का जीवन का दुरुपयोग करने के कारण ही दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं. और कब कितने जन्मों के बाद उनको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा आप सोचिए. तो मतलब इसमें कितना खतरा है अगर आपने दुरुपयोग किया मनुष्य के जीवन का. अगला जीवन है आप नहीं मानते हैं, मानते हैं अगला जीवन है आपका, आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते, है ना. तो ये इतना बड़ा अज्ञान है, इतना बड़ा अज्ञान है, ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है. और इसी के इस अज्ञान के विरुद्ध इस अज्ञान पर प्रहार करने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन है. तो प्रभुपाद ने जो है विदेशों में जाकर हर जगह इसी बात की स्थापना की. सबसे पहले कृष्ण भावनामृत का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम शरीर नहीं. आज के विज्ञान में प्रभुपाद ने चुनौती दी कि कोई ऐसा विभाग है कि मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में अंतर का अध्ययन करें. अध्ययन करो, शरीर मृत हो गया पहले जीवित था तो क्या अंतर हुआ? तो वो कहते हैं कुछ केमिकल मिसिंग है. कुछ केमिकल मिसिंग है तो अब डालो केमिकल, जीवित करो, है ना. तो आत्मा निकल गई शरीर से, तो आत्मा को अगर तुम नहीं समझते हो तो कैसे आप इसका जो है निर्णय करोगे कि क्या अंतर है जीवित शरीर मृत शरीर, क्या अंतर है? तो इस अंतर को क्यों नहीं वे लोग अध्ययन करते? प्रभुपाद ने कहा कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, इस अंतर को क्यों नहीं अध्ययन करते कि मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में क्या अंतर है, क्या चीज मिसिंग है, है ना. तो ये जो है प्रभुपाद ने वैज्ञानिक तरीके से कृष्ण भावनामृत का जो है ये प्रचार किया इस बात. ठीक है जी, जी आप इनका प्रश्न है कि जब ये कहा जाता है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं तो वहां मैं निवास करता हूँ, वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। तो भगवान ब्रह्म रूप में तो सब जगह उपस्थित हैं, परमात्मा के रूप में भी हैं, प्रत्येक परमाणु के अंदर भी हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में भी हैं, है ना। लेकिन भगवान के रूप में यहाँ जो भगवान कह रहे हैं ना हम बसा में वैकुंठ है, तो वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं, वैकुंठ भगवान निवास करते हैं, और वैकुंठ में भगवान का जो है प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। गान का मतलब गुणगान, नाम भी इसमें है, तो नाम से प्रारंभ होता है, और नाम से जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो फिर भगवान के रूप का भी जो है आप आकर्षण, रूप का भी आप आनंद ले सकते हैं, भगवान के दर्शन का आनंद ले सकते हैं। और रूप से जब आप शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों का आप आनंद ले सकते हैं, गुणगान करते हैं, और गुणों से भगवान के गुणों से आप जब शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं का आप आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान का जो है जो गान होता है, तो नाम रूप गुण लीला ये क्रम से आप जो है आगे आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की जो कथा होती है, भगवान की जो लीलाएँ, चैतन्य महाप्रभु लीलाएँ हैं और श्रीमद् भागवत और भगवान की लीलाओं का वर्णन है, तो इस संबंध में जो है मतलब भगवान कहते हैं। और भगवान जब उस संबंध में जब भक्त लोग भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथयंती चा, जब मेरे संबंध में जो कथाएं हैं वो सुनते हैं और सुनाते हैं, तपंत विविधास तापास नेतान मदगत चेतसा, तो विविध प्रकार के जो ताप हैं उनका वो अनुभव नहीं करते। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो है भगवान की कथा का जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि तीन प्रकार के जो तापों से आप जो है क्या हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, आप ऊपर उठ जाते हैं, तीन प्रकार के तापों से। तो भगवान की कथा का जो है ऐसा प्रभाव है। प्रविष्टा करण रंध्रेण स्वानाम भाव स्तरोरुहम, भगवान कथा के रूप में कान के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं हृदय में। धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, तो भगवान जो हृदय का जितना भी समल है, जितना भी अशुद्धि है, वो सब धोते हैं, हैं? तो भगवान धुलाई करते हैं, आपके हृदय को स्वच्छ करते हैं, है ना। तो भगवान की कथा का ये प्रभाव, भगवान स्वयं जो है कान के छिद्र से हृदय में प्रवेश करते हैं और धुनोति, धुनोति धुलाई करते हैं, हृदय की धुलाई करते हैं, है ना। तो हृदय में तो भगवान विराजमान है, तो अभी हृदय अशुद्ध है हमारा, हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में है भगवान, सबके हृदय में है भगवान, लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं, हृदय में अशुद्धियाँ बहुत सी हैं, तो वो तो शुद्ध नहीं करते हृदय को, परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन जब भगवान कथा के रूप में कान के छिद्र से प्रवेश करते हैं तो हृदय को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये अंतर है ना, इस प्रकार का अंतर है। ठीक है, कृष्ण कुमार प्रभु बोलिए। हाँ, इनका अच्छा, इनका अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, तो जो चिंगारी हम भगवान की सेवा में लगे हैं, जब आते हैं भौतिक जगत में, तो प्रकृति के तीन गुणों में से अगर तमोगुण में आ गए तो बिल्कुल जैसे पानी में गिरी चिंगारी तो बुझ गई, है ना। और रजोगुण में आ गए तो जैसे कि जमीन में गिरी, जमीन ना, जमीन में गिरी तो अब वो जल भी रही है लेकिन बुझने की स्थिति में आ गई। और अगर सूखी घास में गिरी चिंगारी तो उसमें जो है फिर वो उसमें आग पकड़ती है। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम सतोगुण में आते हैं तो, सतोगुण में आते हैं तो मतलब भगवान की कुछ संगति, थोड़ा सा भगवान के निकट होता है सतोगुण, और उससे हमें जो है अपना तेज प्राप्त होने लगता है। और शुद्ध सतगुण का मतलब क्या होता है कि भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रहे। तो अगर जीव जो है भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रहे तो इसका मतलब प्रेम की स्थिति, प्रेम की अवस्था। तो प्रेम की अवस्था में क्या होता है कि भगवान के प्रति जो है उसकी स्वतः सेवा की भावना होती है। तो प्रेम की अवस्था उसी प्रकार से कही जाती है कि जैसे हमारा हाथ है, तो ये हमारा हाथ है, है ना। तो अगर मान लीजिए कुछ मक्खियां बैठती है तो हाथ तुरंत हटाता है मक्खी को, इसको आदेश देने की जरूरत नहीं है, हाथ तुरंत ही जो है, अगर मान लो कोई प्रहार हो रहा है तो हाथ रोकता है, सिर की रक्षा करता है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की स्वाभाविक सेवा में आ जाएं, अन्या विलासिता शून्यम, बिना किसी अभिलाषा के, हैं, जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं उसमें कोई अभिलाषा नहीं होती है, बल्कि स्वभाव बन जाता है भगवान की सेवा करने का, तो उसको क्या कहते हैं, निर्गुण। सत्वगुण में क्या है, सत्वगुण में होता है कि हमारा कल्याण हो, हमारी रक्षा हो, है? हम सात्विक, जब सत्वगुण में जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा, हमारी रक्षा होगी, है? हम संसार बंधन से छूटेंगे, तो सत्वगुण है, ठीक है। रजोगुण में क्या है, हम भगवान की सेवा करते हैं, हमको विषय भोग चाहिए, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, है ना। तमोगुण में हम भगवान की सेवा करते हैं तो कुछ द्वेष का भी भाव रहता है भगवान के प्रति, भार का भी भार लगता है भगवान की सेवा में, तमोगुण। तो किसी प्रकार से भी आप तमोगुण में हैं तो आप जो है, आपकी भक्ति यदि भी तमोगुण में है तो भी तीव्र भक्ति करो। आप रजोगुण में हैं, आपकी भक्ति रजोगुण में, तीव्र भक्ति करो, उसी भाव में ही तीव्र भक्ति करो। आप सत्वगुण में हैं, तीव्र भक्ति करो, है ना। तो तीव्र भक्ति से आप जो है क्या है कि बड़ी जल्दी कहाँ आप पहुंचेंगे, निर्गुण अवस्था। और निर्गुण अवस्था का मतलब है प्रेम का धरातल, जिसमें कि स्वाभाविक रूप से अपना जो है भगवान के प्रति प्रेम होता है, सेवा होती है, किसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, ना अपना कुछ जो है स्वार्थ होता है कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो मेरापन नहीं होता, मेरा तेरा का भाव नहीं होता है। तो कृष्ण के सुख में ही अपना सुख है, कृष्ण के सुख में अपना सुख है, तो अपना ही सुख समझ करके वो जो है कृष्ण को सुख प्रदान करता है, और मेरा सुख और किसी प्रकार से नहीं हो सकता है, कृष्ण से अलग होकर के मेरा सुख हो नहीं सकता, तो वो प्रेम का धरातल है, उसी को कहते हैं निर्गुण, ठीक है। धन्यवाद। इनका प्रश्न है कि अगर हम लोगों को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो और 100% नहीं करता तो उसकी क्या कहते हैं, यही ना, अगर 100% नहीं करता, हाँ अगर 100% नहीं करता भगवान की भक्ति तो भी आप शुरू कर रहे हैं, तो 1% से भी शुरू करते हैं तो आप माया की सेवा 99% कर रहे हैं, तो 1% भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो चलो 1% से आपने शुरू किया, ठीक है, आपने 1% शुरू किया, आप एक माला जप कर रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, हम प्रोत्साहन देते हैं कि चलो करो, एक माला ही करो, ठीक है ना। तो इस तरह से करते करते भी 1% से परसेंटेज आप बढ़ाते हैं भक्ति का, 2%, तो माया की सेवा फिर 98% रह जाती है। इस तरह से परसेंटेज बढ़ाओ, ठीक है, एकदम से आप 100% कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो शुरुआत कैसे भी हो आप शुरू करो, और कुछ नियम बनाओ, कुछ नियम बनाओ कि आप रोज कम से कम कितना करेंगे, है ना, तो ये जो है मतलब रक्षा करेगा। अगर आप कुछ नियम बनाते हैं तो इससे आपकी बड़ी रक्षा होगी कि आप भी फिर संभावना है कि आप और इसको बढ़ाएंगे। तो भक्तों की संगति में रहो, बने रहो, और 1% शुरू करो, तो भक्तों की संगति में देखते देखते फिर आप जो है 2%, फिर 3%, और जैसे जैसे आपका भय दूर होगा है? तो आप जो है भक्ति का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।